हरे कृष्णा। तो आज के 23 फरवरी को हमारा परम सौभाग्य ये है कि हमारे साथ दो श्रेष्ठ वैष्णव उपस्थित हैं। सबसे पहले सी पलसो वासी तुलसी बाबा महाराज। तो मैंने कहा सी पलसो वासी का मतलब क्या होता है, तो दो गांव है, एक सी और एक पलसो। सी का एक्चुअल नाम है शीघ्र, है ना, और पलसो का नाम है पलसो मतलब परसो, तो मैं बता दूंगा उसका मतलब क्या है। और दूसरे हमारे भक्ति वेदांत अस्पताल और संशोधन संस्थान के जो 8 अस्पताल है उन सभी 8 समूहों के अस्पताल के संचालक डॉक्टर संखे उर्फ हिज ग्रेस माधवानंद दास प्रभु। इतना ठंडा हरि बोल करके मुझे शर्मिंदा मत करो। हरि बोल, हरि बोल। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी यात्रा में। तो सी पलसो इसका अर्थ यह है कि दो गांव हैं। अभी हम जिस रास्ते से आए वो छाता जाएगा, अगर हम गोवर्धन के रास्ते से जाएंगे तो वो गांव आते हैं बीच में। तब जब गोपियों को लेने के लिए अक्रूर जी आए थे, सॉरी अक्रूर जी गोपियों को नहीं, कृष्ण जी को लेने के लिए अक्रूर जी आए थे, तो गोपियों को कृष्ण ने एक गांव में कहा था कि मैं शीघ्र ही आऊँगा, तो उस नाम गाँव का नाम पड़ा है सिंह। और दूसरे गाँव में कहा कि मैं पलसो आऊँगा, दो दिन के बाद आऊँगा, तो उस गांव का नाम पड़ा परसों पलसों। आज भी वो नाम गांव इसी नाम से प्रसिद्ध है। तो आप वहीं से हैं ब्रजवासी, और अभी मान मंदिर के पास जो मोरकुटी है ना, मोरकुटी मोरकुटी के रास्ते पे बीच में श्री राधा रानी और कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। हो सके तो इनके फोर्स की वजह से आज हम वहाँ जाएंगे, और उधर राधा रानी और कृष्ण के दोनों के चरण चिन्ह हैं एक ही साथ, बहुत अद्भुत है वो, उनके गुरु महाराज का स्थान है और वहीं पर रहते हैं। बहुत गोल 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 घूम के जाना पड़ता है जंतर मंतर में, किसी के सहारे वापस आ सकते हैं आप, तो एक बार गए तो गए अंदर, और वहीं पर बाबा जी रहते हैं। तो आज हमारा बहुत सौभाग्य है, मुझे उन्होंने पर्सनली ब्रज के कई जगह पर दर्शन कराया है, नई नई जगह पर, मैं बहुत उनका आभारी हूँ। और जब बाहर जब से हमारा कैंप हुआ है शुरू राधा माधव आश्रम में, तब से हर रोज़ तुलसी बाबा चरणामृत महाप्रसाद मंगल आरती का संध्या आरती का संध्या भोग का आके सबसे प्रेम से मिलते हैं, और बहुत लोगों को भर भर के प्रसाद भेज देते हैं बॉम्बे में तुलसी बाबा जी महाराज। जय हर। और माधवानंद प्रभु और मैं उम्र के 16 साल से साथ में हैं, 11th स्टैंडर्ड से, 11वीं 12वीं एक कॉलेज में एक क्लास में, तो उसके बाद में MBBS भी एक क्लास में JJ हॉस्पिटल में, उसके बाद में हरे कृष्णा में भी एक साथ में। क्या करें, पीछा ही नहीं छोड़ते। यात्रा में भी एक साथ में। इस तरह से भगवान ने ऐसे बड़ी कृपा है कि हमारे भगवान की हमारे ऊपर कि हमें इतना लंबा संग दिया है, नहीं तो उस भौतिक दुनिया में कौन किसके साथ में रहता है। कोई है बचपन का याद साथ में है क्या, पता नहीं, समझ के समय के मझधार में कहाँ भय गए सब लोग। वो सब डूबते रहे भंवर में बिचारे, जो सब दोस्त दोस्त कहलाते हैं वो सब चले जाते हैं। जो आत्मा के साथ में संबंधित होते हैं वही बचते हैं और वही आगे तक पहुंचते हैं, उतनी लंबी रेस आगे कोई भाग नहीं सकता है, केवल वो जो आत्मा के सर पे है वही उतनी लंबी रेस चल सकता है, आखिर तक साथ दे सकते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आत्मा का रिश्ता बहुत ज़रूरी है, बाकी पैसे का रिश्ता, फोन का रिश्ता, ये सब खत्म होने वाले रिश्ते हैं। हम सब लोगों को ऐसे रिश्तों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, तो कभी भी वो दगा दे सकते हैं। जब दिल का रिश्ता होता है और दिल का रिश्ता भगवान के साथ जुड़ा हुआ होता है तो फिर वो टूटता नहीं है। और दिल के रिश्ते में कैसा होता है, झगड़े होते हैं, बाकी के रिश्ते में पड़ोसी हमारे पास कचरा फेंक दिया हमारे घर के सामने, झगड़ा हो गया तो है तो 4 फीट आगे घर उसका, लेकिन वो 50 फीट दिल से दूर चला जाता है। लेकिन जब दिल से दोस्त के साथ झगड़ा होता है तो झगड़े के बाद में और पास में आ जाते हैं। अद्भुत अद्भुत न्याय है ये भगवान प्रकृति का, क्योंकि प्रेम में जब झगड़ा होता है तो और पास में लेके आते हैं। राधा रानी जब मान करती है तो वो मान राधा और कृष्ण को और पास में लेके आते हैं। तो हम सब लोगों को ऐसे रिश्ते के लिए प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ी कीमती चीज़ दुनिया में जो है वो है रिश्ता। लोग समझते हैं पैसा, लेकिन सबसे बड़ी जो दौलत है वो है रिश्ता, रिश्तेदारी, रिलेशनशिप। सबसे अधिक आनंद या सबसे अधिक दुख उसमें से मिलता है। वो इतना पोटेंशियल है कि सबसे भयंकर दुख हमको सबसे नज़दीक के लोग दे सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक सुख भी वही दे सकते हैं। ये स्थिति है। उसके बाद में सब पैसा वैसा सब उसके बाद में होता है। एनीवेज, आज हम लोग सब साथ में मिलकर इतनी सुंदर जगह पर बैठे हैं, इसका नाम है अंजनोक, और अंजनपुर कह सकते हैं इसको। ये विशाखा देवी का गांव है, बरसाना राधा रानी का गांव है, ये अंजनोक है, इसको अंजनपुर कहते हैं, इसमें विशाखा देवी का जन्म है। ये इसका नाम अंजनोक पड़ा, इसमें अंजन सम्मिलित है ना नाम में। तो कुछ लोगों को कुछ करना पड़ेगा उधर, ऐसा रहेगा तो फिर चलता रहेगा उधर। वाकई किताब में इन्होंने बताया है, इंदुलेखा नहीं है, विशाखा है। तो राधा रानी और कृष्ण भगवान का मिलन स्थली ये तय हुआ एक दिन, क्योंकि इसमें देखो झूला है, ये देख रहे हैं ना, इसको झूला कहते हैं। इसमें सावन के महीने में झूला लगाकर ठाकुर जी को झूलाते हैं। वो सामने जो बनाया है वो रास मंडल है, वो जो बीच में बनाया है वो रत्न सिंहासन का, महाराज राधे राधे जय श्री राधे, बीच में जो बनाया है वो रत्न सिंहासन की प्रतिकृति है, यानी कि राधा कृष्ण को वहाँ विराजमान करते हैं। जब रास होता है तो उसके पहले राधा कृष्ण को विराजमान करके उनकी सेवा होती है, उसके बाद में रास शुरू होता है। और ये आपके साइड में जो है ये किशोरी कुंड है, दिख रहा है आपको उधर, श्री राधे, हरे कृष्णा। तो ये किशोरी कुंड है, यहाँ पर राधा और कृष्णा बैठते हैं और लीला करते हैं। तो इस सुंदर स्थान में राधा कृष्ण के मिलन का तय हुआ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वृंदा देवी के नेतृत्व में ये सब योजना होती है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है। तो राधा और राधा का श्रृंगार चल रहा था, कृष्ण का श्रृंगार चल रहा था, समय तय हुआ था, लेकिन इस समय कृष्ण पहले पहुँच जाते हैं। जो पहले पहुँचता है उसका क्या होता है, बहुत एंग्जाइटी में आता है, किधर है किधर है, मैं तो आ गया, आप किधर हो, आप किधर हो। तो वो मुरली बजाते हैं, 8वीं धुन बजाते हैं, उसमें 8वीं धुन में क्या बजता है, राधा 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 बजता है, और किसी को सुना नहीं पड़ता है। तो यहाँ से 8वीं धुन बजाते हैं, सीधे श्री जी के महल में आवाज़ आती है। तो राधा रानी श्रृंगार कर रही है अपने स्पीड में, लेकिन जैसे ही आवाज़ सुनाई पड़ती है तो बहुत अस्थिर हो जाती है, बहुत अस्वस्थ हो जाती है। अरे सखियों क्या कर रहे हो, कितना टाइम लगाते हो, जल्दी चलो पहुंच गए उधर, बुला रहे हैं। तो फिर जल्दी जल्दी में काम शुरू होता है, इट्स लाइक टू क्विक, एवरीथिंग इज नो टाइम नाउ। तो ऐसे जो भाव होता है ना, जब समय हो चुका होता है, बहुत सारे काम बाकी होते हैं और बहुत सारा करना है अभी, टाइम नहीं है, भगदौड़ मच रही है, उसको कहते हैं विशुद्ध खंडिता भाव। तो ललिता देवी इसको मैनेज करने में बहुत एक्सपर्ट है। तो ललिता देवी ने बहुत सुंदरता से इसको मैनेज किया, सब कुछ शांत रखी, जो भी कितना हो सके उतना किया। बाद में बार बार मुरली बजती रही तो फिर वो बोले बस हो गया अभी, इससे जो भी है छोड़ो अभी हमें जा रहे हैं। तो भाग के फिर वहाँ से आ जाती है सखियों के साथ में। जब आ जाती है तो अभी आने के बस मुझे आप आ गए, लेट आ गए, तो शुड बी हैप्पी ना जैसे इसका। तो कृष्ण भगवान जोर से हंस पड़ते उसको देख के, तो बोले क्यों हंस रहे हो? तो फिर से हंसते तो बताओ ना क्यों हंसे भे, तो आ गई भाग भाग के, अभी हंस क्यों रहे हो आप? बोला आपने तो काजल तो लगाया नहीं, इतना श्रृंगार करके आया लेकिन काजल ही नहीं लगाया आपने। तो अरे सखियों क्या तुम लोग काजल नहीं लगाए, हम लगाने वाले थे, आप बोले चलो छोड़ो अभी भागो, तो मैं भाग के आ गया सब लोग आपके पीछे पीछे। बोले चलो अभी झटके आती हूँ काजल लगा कर, अभी जाके आती हूँ। तो भी वो आ गया है आदमी देर से, व्यक्ति कोई देर से व्यक्ति आ गया, वो फिर जाएगा और फिर इंतजार करवाएगा तो कैसे चलेगा? बोले कोई बात नहीं, कोई जाने की जरूरत नहीं, मैं काजल लगाता हूँ। तो एक शिला पर उंगली घिसी, उसमें से काजल उत्पन्न हो गया। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से राधा रानी की दोनों आंखों में काजल का श्रृंगार किया और उनका अधूरा श्रृंगार जो है वो पूरा किया। वो शिला इस मंदिर के अंदर है, अभी मंदिर खुलेगा कथा के बाद, फिर आप सब लोग उसमें देख लेना कि हम झूठ कह रहे हैं कि सच कह रहे हैं। खुद उंगली घास के देखना काजल पैदा होगा। तो उसका एक तो रहस्य मैंने आपको उधर बताया था, लेकिन आप लोग बहुत सारे लोग नए आए हैं शायद, समय थोड़ा कम है इसलिए आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। भगवान की सेवा में जो प्रामाणिक होता है ना, बहुत सिंसियरली काम करता है, उसकी सेवा में जब कोई त्रुटि होती है, कोई कमी होती है, तो भगवान स्वयं उसको पूरा कर देते हैं। लेकिन हृदय प्रामाणिक होना चाहिए, बहुत सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हम सब लोग ही अपूर्ण हैं, भौतिक दुनिया में कौन पूर्ण है? कोई एक चीज़ में पूर्ण हो सकता है, फिर भी उसमें गलती हो सकती है, और गलतियाँ सबसे होती है, तो गलतियाँ होने बड़ी बात नहीं है, लेकिन हृदय में प्रामाणिकता होना बहुत ज़रूरी है, सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। और जब वो प्रामाणिकता से कोई सेवा करता है, उसमें कोई गलती होती है, तो भगवान स्वयं उस गलती को दुरुस्त कर देते हैं। तो राधा रानी कितने प्रेम से श्रृंगार कर रही थी, इसलिए नहीं कि मैं खुद सुंदर दिखूँ, सबके बीच में मैं एकदम ऐसे उठकर दिखूँ, ये उनका भाव नहीं था। उनका भाव एक ही था कि श्री कृष्ण भगवान के दो कमल नयन नेत्रों को, मेरे सौंदर्य को देखकर आनंद मिले, इसलिए वो श्रृंगार कर रही है। उस प्रयास में वो कुछ भूल गई, तो श्री कृष्ण ने उसके सुंदर प्रयास को देखकर उसको भी पूरा कर दिया चमत्कार के साथ। किसी को काजल लेने को भेजा, काजल लेके आओ जरा नंदगांव से, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, वहीं से उत्पन्न किया दिव्य। भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हर नामुमकिन चीज़ जो हमको नामुमकिन लगती है वो उसको मुमकिन कर सकते हैं, इसलिए वो भगवान है। तो वहाँ पर वो शिला जो उसका नाम है कजरोटी शिला, वो अंदर है उसके। और दूसरा भी यहाँ का एक रहस्य ऐसा है कि हम लोग कहते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसमें भी अंजन नाम का शब्द आता है। वो हम लोग सब लोग अज्ञान रूपी अंधकार में पड़े हुए हैं। ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य, अंध तिमिका, तिमिर जो है मतलब अंधकार से भरा हुआ, जो अज्ञान का समय सिचुएशन है उसमें हम लोग फंसे हुए हैं। तो गुरुदेव जो है वो ज्ञान का अंजन हमारी आंखों में लगाते हैं, और जब वो ज्ञान का अंजन आंखों में लगाते हैं तो जैसा जैसा जो कुछ है वैसा दिखता है, जैसा नहीं है वैसा दिखता नहीं है। जब तक ज्ञान का अंजन नहीं है तो हर चीज़ अलग दिखती है, लगती है कि तो मेरे लिए बनी हुई है, ओ ये भी मेरे लिए बना हुआ है, ओ यहाँ पर भी वस्तु वो मेरे लिए बनी हुई है। लेकिन जब ज्ञान का अंजन आता है तो समझता है मेरे लिए बनी नहीं है, तो कृष्ण के लिए बनी हुई है। इतना सुंदर वातावरण, सुंदर वस्तुएँ, सुंदर भोग की वस्तुएँ, विषय वस्तुएँ, वो सब कृष्ण के लिए बनी हुई है। जैसे हमने आप लोगों ने राधा माधव का श्रृंगार किया ना, कितने अलंकार लेके आए, लोगों को लगेगा ये माँ बेटी बहुत शौकीन लगते हैं, इतने गहने लेके जा रहे हैं। उनका बैग कोई देखेगा लगेगा इतने सारे गहने, दो छोटी सी औरतें इतने सारे गहने पहनेंगे। लेकिन उनको अगर ज्ञान का अंजन लगाएंगे तो पता चलेगा कि ये इनके लिए नहीं लेके जा रहे, ये ठाकुर जी माधव के लिए लेके जा रहे हैं, राधा माधव के लिए। तो समझेगा उनको कि भाई इतना बड़ा बक्सा जो है, खुद का बक्सा है लेकिन छोटा सा है लेकिन राधा माधव का बक्सा जो है बड़ा है बहुत। तो ज्ञान अंजन लगने के बाद में ये दृष्टि बदल जाती है। तो गुरुदेव वो अंजन लगाते हैं, ठाकुर जी ने भी यहाँ पर अंजन लगाया है, हाँ काजल का अंजन लगाया है। तो सबसे आदि गुरु तो ठाकुर जी है स्वयं, वो सबके अंधकार में हृदय में ज्ञान का और प्रेम का और भक्ति का अंजन लगाते हैं। तो साधु लोग भी, उनके विषय में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, हाँ प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेशु विलोकयंती यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदम आदिपुरुषम तमाम बजामी। उसका अर्थ यह है कि जब आँखों में हमारे प्रेम और भक्ति का अंजन लगता है, तब हृदय में हमेशा सदैव श्याम सुंदर भगवान का दर्शन होता है। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, जिनका रूप गुण सब कुछ अचिंत्य है, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, वो किसको दिखते नहीं है, वो अलभ्य है और दुर्लभ है, वो दुर्लभ व्यक्ति जो है प्रेम अंजन लगाने से सदैव हृदय में दिखाई पड़ते हैं। किसके हृदय दिखाई पड़ते हैं? संतों के हृदय में, क्योंकि संत लोग ही लगाते हैं उसको, बाकी किसी को प्रेम अंजन लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको केवल भोग में इंटरेस्ट है, मुझे क्या मिलेगा, अपना तो एक ही मंत्र होता है ना, क्या मिलेगा सब जगह एक ही नारा होता है, क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा। लेकिन भौतिक दुनिया में जो मंत्र होता है वो आध्यात्मिक दुनिया में नहीं होता है, वो एक ही प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछते हैं, किम कर रहा, क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। भक्त लोग एक ही सवाल पूछते हैं, अभी क्या करूं, क्या सेवा करूं, सेवा हो गई बिल्कुल, अभी क्या करूं, और कुछ सेवा बताइए। वो व्यक्ति के लिए प्रेमांजन प्राप्त होता है, और वो प्रेमांजन प्राप्त करने से जिनके लिए सारी दुनिया तड़प रही है दर्शन करने के लिए, वो दुनिया में कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तो हृदय में दर्शन देना आरंभ कर देते हैं। संतः हृदयेशु विलोकयंती, अंदर से ही दर्शन होता है, कहीं आंख बंद करो ठाकुर जी का दर्शन करो। तो ये यहाँ पर बहुत सुंदर रहस्य है, झूला झूला लीला है। और इस किशोरी कुंड में राधा कृष्ण मिलकर नौका विहार करते हैं, किसी किनारे बैठते हैं, हास्य विनोद करते हैं, सखियाँ उनकी सेवा करती है, यहाँ पर रास लीला होती है। तो ऐसा ही सुंदर स्थान है यहाँ पर। जो ठाकुर जी, उनका नाम है अंजन बिहारी जी, राधा अंजन बिहारी जी, श्री श्री राधा अंजन बिहारी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।